नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ पर उद्यमियों को सशक्त बनाने वाली एक मौन क्रांति के रूप में इसकी सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि के 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखने के फैसले को अवैध और गलत करार दिया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के 3 और राजनीतिक संगठनों ने अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स का आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन में लखनऊ सुपर जायंट से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि उनकी सरकार एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी, जहां हर महत्वाकांक्षी उद्यमी को ऋण तक पहुंचना हो, जिससे उन्हें आत्मविश्वास और विकास का मौका मिले। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि मुद्रा लाभार्थियों में से आधे SC, ST और OBC समुदाय से हैं और 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक मुद्रा ऋण अपने साथ सम्मान, स्वाभिमान और अवसर लेकर आता है। उन्होंने कहा है कि इस योजना ने वित्तीय समावेशन के अलावा सामाजिक समावेशन और आर्थिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की और इस बात पर जोर दिया है कि मुद्रा योजना ने अनगिनत लोगों को अपने उद्यमशीलता कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत देश के लोगों को बिना किसी गारंटी के 33 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है, ताकि वे केवल नौकरी चाहने वाले न होकर नौकरी देने वाले बन सके। बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने उद्यमशीलता के अनुभव साझा किए। पिछले 10 वर्षों में इस योजना के तहत लगभग 33 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
अभी इस योजना को 10 साल हो गए। ये सरकार ऐसी है कि एक योजना का 10 साल के बाद हिसाब लगा रही। लोगों से पूछ रहे कि ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन आप बताइए क्या हुआ। और जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज देश भर में आने वाले दिनों में ऐसे समूहों को मेरे सब साथी पूछने वाले हैं। और उसके कारण अगर कोई इसमें बदलाव लाना है, कुछ सुधार करना है, तो वो उस दिशा में भी हम जाने वाले हैं। शुरू में 50,000 से 5 लाख की सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए कि पहले सरकार भी सोचती थी भाई 5 लाख से ऊपर मत, तो डूब जाएगा तो क्या करेंगे, तो मोदी के बाल लौट लेंगे सब लोग। लेकिन मेरे देश के लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं। मेरा जो मेरे देशवासियों पर भरोसा था, उसको आप लोगों ने मजबूत किया और उसके कारण मेरी हिम्मत हुई कि 50,000 से 20 लाख पर पहुंच गए। ये निर्णय छोटा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि ने राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए गए 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखकर अवैध और गलत काम किया है। जस्टिस J.B. पारदीवाला और R. महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाया है कि राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना संभव नहीं है, जिसे विधानसभा द्वारा फिर से पारित किए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा फिर से पेश किया गया था। एक बार जब विधेयक राज्यपाल के सामने फिर से पेश किए गए तो उन्हें मंजूरी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें स्वीकृति माना जाता है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास स्वीकृति रोकने का विवेकाधीन अधिकार नहीं है और उन्हें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री M.K. Stalin ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु और पूरे भारत में सभी राज्य सरकारों के लिए ऐतिहासिक जीत बताया है। तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए C.M. Stalin ने कहा है कि फैसले ने विधायी स्वायत्तता पर राज्य के रुख को सही साबित किया है। अरुणाचल प्रदेश में कल आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपर एज लिमिट में एक बार छूट की मंजूरी दे दी है। इससे उम्मीदवारों को उन श्रेणियों के पदों के लिए पात्र होने और आवेदन करने में सक्षम बनाती है जहां पिछली रिक्त अधिसूचनाएं 2024 से पहले जारी निर्धारित शर्तों के अधीन अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रद्द कर दी गई थी या रद्द कर दी जाएंगी। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के तहत असिस्टेंट इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स के पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक सामान्य परीक्षा योजना तैयार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। दुबई के क्राउन प्रिंस संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम आज 2 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय राजधानी के हवाई अड्डे पर राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने उनका स्वागत किया। दुबई के क्राउन प्रिंस के रूप में ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। उनके साथ कई मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। अतिथि गणमान्य व्यक्ति विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठक करेंगे। उसके बाद क्राउन प्रिंस मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां वे दोनों पक्षों के प्रमुख व्यापारिक नेताओं के साथ एक व्यापारिक गोलमेज बैठक में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और सोलवाक गणराज्य की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर हैं। पुर्तगाल की अपनी यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन आज राष्ट्रपति ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेग्रो से मुलाकात करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू ने लिस्बन में अपने पुर्तगाली समकक्ष मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पुर्तगाल की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के निमंत्रण पर स्लोवाकिया की यात्रा करेंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि मंत्री एवी डिचर ने आज नई दिल्ली में कृषि में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा है कि भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय साझेदारी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों देश कृषि, नवाचार, जल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सहयोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 और राजनीतिक संगठनों ने अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया है। इनमें जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट शामिल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि ये भारत के स्वाधीन में लोगों के भरोसे का एक मजबूत प्रतिबिंब है। श्री शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकजुट और मजबूत भारत का दृष्टिकोण और मजबूत हुआ है, क्योंकि अब तक 11 संगठनों ने खुद को अलगाववाद से अलग कर लिया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए श्रीनगर के राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार के विकास एजेंडे के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी पहलों की प्रगति का प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त करना था। बैठक के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने, पर्यटन को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी में सुधार करने और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। आज अधिकांश एशियाई बाजार बढ़त के साथ खुले। जापान के निक्केई 2025 में जोरदार उछाल आया है और ये 6.41% बढ़ा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के बीच कल फोन पर व्यापार वार्ता शुरू करने पर सहमति बनने के बाद शुरुआती कारोबार के दौरान टॉपिक्स में 6.81% की बढ़त दर्ज की गई। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि अगर बीजिंग आज तक अपने प्रतिशोधी टैरिफ वापस नहीं लेता है तो वो चीनी वस्तुओं पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा देगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैकमेल रणनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगा और बढ़ते व्यापार विवाद में अंत तक लड़ने की कसम खाई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री पुरी ने कहा है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से पहले टैरिफ के बारे में विकास होने देना चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका ने ईरान के साथ सीधी बातचीत शुरू कर दी है, जबकि तेहरान के वाशिंगटन की वार्ता को आह्वान को पहले ही खारिज कर दिया था। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 से कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से कोलकाता के ईडन गार्डन में शुरू हुआ, जबकि दूसरे मैच में पंजाब किंग्स का मुकाबला शाम 7:30 पर चंडीगढ़ के चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।